नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और जनसुविधाओं से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र के विकास हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, पारदर्शी मूल्यांकन के माध्यम से लोकतंत्र और मजबूत बनेगा। आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव न लड़ने की घोषणा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 75 प्रमुख पहलों की शुरुआत करेगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और जनसुविधाओं से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन तथा निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजधानी की पहली हॉटलाइन मेंटेनेंस वैन को रवाना किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ऐसी अन्य परियोजनाओं में करीब 65 लाख रुपए की लागत से नए अंडरग्राउंड रिजर्वायर, नए ट्यूबवेल और ऑनलाइन बूस्टर पंप शामिल है। इस अवसर पर चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल, दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आशीष सूद सहित कई स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई यह वैन बिना बिजली आपूर्ति बाधित किए लाइनों और उपकरणों की मरम्मत करने में सक्षम है। ऐसे वाहन राजधानी के हर विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 33 किलोवाट के ओवरहेड कंडक्टर को अंडरग्राउंड केबल में बदलने की परियोजना की भी शुरुआत की, जिसकी लागत करीब 3 करोड़ रुपए है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पूरी दिल्ली में लगभग 44,000 लाइटों को LED में बदलने का कार्य तेजी से जारी है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने हैदरपुर में एक नए PM श्री स्कूल की स्थापना की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने घोषणा की कि हुनक नहर को छठ और दिवाली से पहले पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा।
हमारे पावर मंत्रालय ने एक उपहार दिल्ली को दिया है, एक ऐसी गाड़ी जो बिना बिजली सप्लाई को इंटरप्ट किए हुए आपकी बिजली की तारें ठीक कर देगी।
वहीं श्री सूद ने कहा कि यह पहल न केवल दिल्ली की बिजली व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित, सुदृढ़ तथा आधुनिक बनाएगी, बल्कि लाखों उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
ऐसी मशीन आपको समर्पित की जा रही है जिसमें चलती बिजली में काम करने की खूबी है। पूरे मोहल्ले की लाइन भी बंद नहीं करनी पड़ेगी और जम्पर को चलती लाइन में ठीक करने की कैपेसिटी इस मशीन में है।
दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की परियोजनाएं भविष्य में राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में भी शुरू की जाएगी, जो सरकार की विकसित दिल्ली के सपने को पूरा करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के पास रिंग रोड से जोड़ने वाली सड़क का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब यहां नई सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे पीतमपुरा आने जाने वाले लोगों को सहूलियत होगी और क्षेत्र के लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी वहां उपस्थित थे। श्री खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार की लापरवाही से अतिक्रमण का शिकार रही ये सड़क अब 12 करोड़ रुपए की लागत से नई बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण से हजारों लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि ऐसे ही विकास कार्य उनकी लोकसभा की हर विधानसभा में लगातार होते रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC क्षेत्र के विकास हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में नागरिकों द्वारा साझा की गई समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तत्काल समाधान और कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
इसके अंतर्गत झुग्गी बस्तियों में शौचालय टाइल्स और सीवर लाइन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा जनसंख्या के आधार पर शौचालय निर्माण किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में अत्यधिक झुके हुए पेड़ों की छटाई की जाएगी ताकि नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे। वहीं 100 नए झूले और नई तकनीकी ओपन जिम उपकरण का भी स्थापना की जाएगी। श्री सिंह ने रेखांकित किया कि यह सभी कार्य जन भागीदारी और क्षेत्र की जमीनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और NDMC का संकल्प है कि हर नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पहुंचे। आदर्श के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए दिलनशी आरज़ू।
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज कहा कि पारदर्शी मूल्यांकन के माध्यम से लोकतंत्र और मजबूत बनेगा। श्री गुप्ता ने ये बात बेंगलुरु स्थित कर्नाटक विधानसभा में हो रहे 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए एक पारदर्शी और डेटा आधारित उपकरण है और ये राज्य विधानसभाओं के लिए एक मानक साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये न केवल विधान संस्थाओं की उत्पादकता और गुणवत्ता को मापता है बल्कि लोकतांत्रिक प्रदर्शन में प्रगति और कमियों की पहचान भी करता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जहां स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक शासन के लिए राज्य स्तर पर विभिन्न मापदंड उपलब्ध हैं, परंतु अब तक विधानसभाओं के कार्यों और प्रभावशीलता को मापने का कोई समग्र तंत्र नहीं था। उन्होंने रेखांकित किया कि नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स अब इसी कमी को पूरा करेगा। श्री गुप्ता ने आगे कहा कि इसकी शुरुआत जनता के विश्वास को बढ़ाएगा, संसदीय परंपराओं को सशक्त करेगा और राज्य विधानसभाओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आज द्वारका विधानसभा के कई गांवों का दौरा किया तथा जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन गांवों में पिछले 10 सालों से किसी भी सरकार का कोई भी मंत्री नहीं आया। श्री मिश्रा ने ये बताया कि इन गांवों में सड़क, पानी तथा स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, साथ ही चौपालों की भी व्यवस्था बहुत खराब है। श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि यहाँ की सभी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाए।
लगभग पिछले 10 सालों से दिल्ली के गांवों की कोई सुध नहीं ली गई। गांवों में ना सड़क बनाई गई है, ना पानी दिया गया है, ना स्ट्रीट लाइट काम कर रही है। जो चौपाल है उनको ठीक किए हुए बहुत साल हो चुके हैं। अब हम लोग यहां पे एक एक समस्या सुन रहे हैं। गलियां बनानी है, द्वार बनाना है, लाइट लगानी है। सारे अधिकारीगण यहां पर हैं और हम लोग मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि इन सभी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाए।
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ABVP ने कहा है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र को 5,000 से अधिक छात्रों से मिले सुझावों के अनुसार तैयार किया है। घोषणा पत्र में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। इसके साथ ही छात्रों के लिए कॉलेज परिसर और हॉस्टल में मुफ्त वाईफाई, सब्सिडी पर मेट्रो पास तथा बस पास जैसी सुविधाओं की मांग की गई है। ABVP ने छात्रों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने, प्लेसमेंट शाखा स्थापित करने और रोजगार मेला आयोजित करने का भी वादा किया है। इससे पहले नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ANSUI ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसके अतिरिक्त छात्र संघ ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र भी तैयार किया है। NSUI ने परिसर सुविधाओं, महिलाओं की सुरक्षा, आरक्षण, छात्रवृत्तियों और नियुक्तियों जैसे छात्रों के मूल मुद्दों के समाधान के लिए वादा किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार सेवा पखवाड़ा के तहत 75 प्रमुख पहलों की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये जानकारी सरकार की एक बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी प्रतिनिधि, सांसद, विधायक और पार्षद इस 15 दिवसीय अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। इसमें स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, परियोजनाओं का शिलान्यास और नई पहलें शामिल है।
रोजाना दिल्ली की जनता को बड़े और नए उपहार दिल्ली की सरकार देगी। ऐतिहासिक रहेगा दिल्ली के लिए ये 15 दिन का सफर, जिसमें विकास की नई ऊंचाइयां, नए आयाम, सुशासन को लेकर के नई परिभाषाएं, नए काम दिल्ली को दिए जाएंगे।
दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इसके अंतर्गत त्यागराज स्टेडियम में एक बड़ी योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे।
त्यागराज स्टेडियम में बहुत बड़ी योजनाओं को जारी किया जाएगा, जिसमें आदरणीय गृह मंत्री जी दिल्ली की जनता को योजनाएं प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर समर्पित करेंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अनेकों योजनाओं को दिल्ली के लिए समर्पित किया है, उन सब पर की जानकारी जनता को देना, ये इस सेवा पखवाड़े का लक्ष्य है।
वहीं आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ASAP ने इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। छात्र संघ ने बताया कि इस वर्ष उनका ध्यान संगठन निर्माण और कॉलेज स्तर पर मजबूती हासिल करना है। हालांकि ASAP ने अगले वर्ष होने वाले छात्र संघ चुनाव में उतरने का निर्णय लिया है। दिल्ली की उद्योग, खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों के शीर्ष उद्यमियों को सम्मानित किया। आज नई दिल्ली में भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण में श्री सिरसा ने कहा कि स्टार्टअप शिखर सम्मेलन उद्यमियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों से जुड़ने तथा नए विचार प्राप्त करने का अवसर देता है। सरकार ने बताया है कि अमृत सरोवर अभियान के अंतर्गत 68,000 तालाब बनाए गए। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करने का लक्ष्य लेकर इस अभियान की शुरुआत की थी। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की वार्षिक रिपोर्ट 2024 भी जारी करेंगे। गृहमंत्री ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्रनाथ दास को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने देश की स्वतंत्रता में उनके बलिदान और योगदान पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद जतेंद्रनाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि जतेंद्रनाथ दास ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए भारतीय कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विकसित भारत के युवा संवाद नेता युवा नेतृत्व वाले लोकतंत्र का एक सच्चा उदाहरण है, जो दृष्टि को आवाज में और आवाज को प्रभाव में बदल देता है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में श्री मांडविया ने बताया कि आज से शुरू हुई क्विज प्रतियोगिता अगले महीने की 15 तारीख को समाप्त होगी। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज दिन भर कड़ी धूप रही। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और जनसुविधाओं से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र के विकास हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, पारदर्शी मूल्यांकन के माध्यम से लोकतंत्र और मजबूत बनेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी किया। वहीं आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ने छात्र संघ चुनाव न लड़ने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।